ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा ने नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पुरानी व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक को किया पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ भारत और चीन के राजदूतों की अलग अलग हुई भेंट। आपसी हित और सहकार संबंध में हुई चर्चा। और यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पुरानी व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक बहुमत से पारित किया गया। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अधीन रखना जरूरी है। इसी तरह सदन ने संवैधानिक निकायों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक सेवा शर्त और सुविधाओं संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को भी बहुमत से मंजूरी दी। सरकार के अनुसार विधेयक का उद्देश्य दोहरी सुविधाओं को रोकना और सरकारी संसाधनों का मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करना है। बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि, मेल मिलाप तथा बाल श्रम संबंधित 3 विधेयक भी पेश किए गए। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल श्रावण 26 को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि सरकार ऐतिहासिक और कूटनीतिक महत्व वाले दस्तावेजों के संरक्षण को गंभीरता से लेते हुए काम आगे बढ़ा रही है। प्रतिनिधि सभा में सांसदों के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में मंत्री खनाल ने बताया कि संगठन एवं प्रबंधन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अलग अभिलेख प्रबंधन शाखा का गठन किया गया है और दस्तावेजों के संरक्षण का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों की खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेशन और सुरक्षित संरक्षण के लिए संबंधित निकायों के बीच समन्वय जारी है। मंत्री खनाल ने बताया कि विक्रम संवत 1816 की संधि और 1950 से जुड़े कुछ दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन संधि के आधिकारिक मूल दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार मित्र देशों और संस्थाओं के सहयोग से नेपाल के हित को केंद्र में रखते हुए उचित समय पर संधियों की समीक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि धनुषा के ढलकेबर में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं रुकेगा। प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सेंटर के निर्माण में समय लगने के कारण फिलहाल लहान स्थित प्रादेशिक अस्पताल में ट्रॉमा यूनिट शुरू की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि लहान की ट्रॉमा यूनिट ढलकेबर सेंटर का विकल्प नहीं बल्कि अंतरिम व्यवस्था है। मंत्री मेहता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दुर्घटना में घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और इलाज के लिए काठमांडू जाने की मजबूरी खत्म करना है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के सीमा विवाद संबंधी विवादास्पद बयान पर संसद में आकर स्पष्ट जवाब देने और अपनी अभिव्यक्ति सुधारने की मांग दोहराई। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से विपक्ष से संवाद करने और आलोचना को दुश्मनी नहीं बल्कि सुधार के अवसर के रूप में लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश हित के कामों में विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को सही दिशा में रखने के लिए सत्ता पक्ष की निगरानी और विपक्ष की आलोचना दोनों जरूरी है। सांसदों ने सुनसरी के कप्तानगंज में हुई घटना में नेपाली नागरिकों की मौत पर सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। साथ ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और गैस की कमी से आम लोगों को हो रही परेशानी की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री शाह द्वारा गत 17 जेठ को प्रतिनिधि सभा में भारत की भूमि पर भी नेपाल द्वारा अतिक्रमण किए जाने संबंधी बयान दिए जाने के बाद से विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन एस्ट्रिक 14-15 #डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से नेपाल के लिए भारत और चीन के राजदूतों ने शिष्टाचार भेंट की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई अलग अलग मुलाकातों के दौरान नेपाल के भारत और चीन के साथ संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग, विकास साझेदारी और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री शाह ने दोनों देशों के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने प्रधानमंत्री शाह को कार्यकाल की सफलता की शुभकामना देते हुए दोनों देशों के साथ संबंध और सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति में राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 पर दफावार चर्चा हुई। बैठक में प्रयोगशाला के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य और अधिकार से जुड़े प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। सांसदों ने नियुक्ति में शैक्षिक योग्यता के साथ जातीय भेदभाव और छुआछूत न करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में समावेशिता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा। विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पुन ने सरकारी निकायों में नई तकनीक में दक्ष युवा पीढ़ी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने नई पीढ़ी को आकर्षित करने और पिछली पीढ़ी के अनुभव को युवाओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम लाने की बात कही। सरकार ने अपराध से जुड़े प्रमाणों के वैज्ञानिक परीक्षण और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा विधि विज्ञान के शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये विधेयक पेश किया गया है। राष्ट्रीय सभा की विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति ने राष्ट्रीय सदाचार नीति 2083 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को तत्काल सदाचार विधेयक लाने का निर्देश दिया है। समिति की आज हुई बैठक में सभी सरकारी निकायों में आचार संहिता बनाने, स्कूल पाठ्यक्रम में सदाचार शिक्षा शामिल करने और प्रत्येक निकाय में तत्काल फोकल प्वाइंट तय करने का भी निर्देश दिया गया। समिति सदस्यों ने कहा कि सदाचार की शुरुआत सरकार से होनी चाहिए और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने सदाचार को सभी वर्गों और क्षेत्रों में लागू करने तथा जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के आचरण में सुधार पर भी जोर दिया। समिति ने राष्ट्रीय सदाचार नीति 2083 जारी करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। सरकार ने गत 18 आषाढ़ को राष्ट्रीय सदाचार नीति को मंजूरी दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के ततारस्तान क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। रूसी अधिकारियों के अनुसार हमले में 39 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित निजने कामस्क शहर में हुआ यह हमला रूस पर युद्ध शुरू होने के बाद के सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। शहर में कई बड़ी तेल रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल उद्योग हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हमला रात में शुरू हुआ और कई घंटे तक जारी रहा। सोशल मीडिया पर सामने आई अपुष्ट तस्वीरों में धुएं के गुब्बार और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। हमले में किन ठिकानों को निशाना बनाया गया इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रूस ने कहा है कि हमले में औद्योगिक और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेन ने इस हमले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और करीब 20 लोगों की मौत की खबर है। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा के अलावा पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए। लोगों को सुरक्षा के लिए घरों और इमारतों से बाहर निकलना पड़ा। भूकंप का केंद्र बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में सैन होजे डेल पाल्मर के पास बताया गया है। चोको प्रांत की राजधानी क्विबडो में कई लोग घायल हुए हैं और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने भूकंप के बाद आने वाले झटकों की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा ने नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 की पुरानी व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक को किया पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ भारत और चीन के राजदूतों की अलग अलग हुई भेंट, आपसी हित और सहकार्य संबंध में हुई चर्चा और यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।